1904 में एक कहानी एचजी वेल्स की पब्लिश हुई थी, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, जो फिर 1911 में पुनः पब्लिश हुई। उसमें एक व्यक्ति है जो पर्वतारोही है और इक्वाडोर के काल्पनिक एक पर्वत पर चढ़ता चढ़ता उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे खाई में गिर पड़ता है और उसे आश्चर्य होता है कि उसने एक ऐसी खोज कर ली है, एक ऐसे देश की जिसकी किंवदंतियां बातें उसने सुनी थी, एक ऐसा देश जहां सब अंधे रहते हैं। स्पैनिश शासकों के अत्याचार से भागकर कुछ लोग उस घाटी में आए थे और फिर एक बड़ा भूकंप हुआ और भूकंप की वजह से चारों तरफ चट्टाने पर्वत ऐसे खड़े हो गए बाद में कि वो दुनिया इस दुनिया से पूरी कट गई और कई वर्षों पूर्व वहां एक ऐसी बीमारी आ गई जिसमें सभी अंधे ही पैदा होने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी अंधत्व बढ़ता गया और जब एक अंतिम व्यक्ति जिसे आंखें थी वो भी चला गया तो पूरे उस शहर में केवल अंधे ही रहते थे। और क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी इसलिए उनकी बाकी इंद्रिय बहुत अधिक विकसित हो गई, श्रवण, स्पर्श, गंध। तो जब ये नुनाज नाम का व्यक्ति उस शहर में पहुंचा तो उसने देखा यहां सब अंधे हैं, उसने देखा यहां के घर विचित्र है, घरों में खिड़कियां नहीं है, रास्ते साफ सुथरे हैं और वहां चलने के लिए दीवारें हैं, किनारे हैं, कर्ब्स। उसे लगा कि मैं तो उसी देश में आ गया जिसके विषय में मैंने सोचा था। उसे लगा कि मैं इन लोगों का कल्याण करूं, इन लोगों को रोशनी की बातें बताऊं, इन लोगों को प्रकाश की बातें बताऊं, पर वो सभी लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो बहुत इरिटेट हुआ, क्रोधित हुआ, उनको समझाता रहा पर वो सभी लोगों ने कहा इसको भ्रम है। कई वर्ष वहां रहा और फिर वहीं वो काम करने लगा एक याकूब नाम के व्यक्ति के पास। और काम करते करते उस मालिक की जो बेटी थी उसके साथ उसका प्रेम हुआ और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु गांव के सभी लोगों ने भयंकर विरोध किया क्योंकि ये दृष्टि जैसी काल्पनिक बातों की चर्चा करता है। सब ने कहा कि इसके मन में अस्थिरता है, मानसिक रूप से यह अस्थिर है, मेंटली इम्बैलेंस, यह निरंतर काल्पनिक बातों की चर्चा करता है। प्रकाश, दृष्टि, ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं है। और गांव के जो बड़े थे उन्होंने यहां तक निर्णय दिया, उनमें से एक चिकित्सक ने, कि यह शादी हमें स्वीकार नहीं है और इसे शादी अगर करना है तो इसकी जो आंखें हैं इसे निकाल देनी चाहिए कि क्योंकि ये आंखें भ्रम उत्पन्न कर रही है, ये आंखें रोग है, ये आंखें बीमारी है इसकी। और उस कहानी में दिखाया है कि वो मान जाता है आखिरकार, पर जिस दिन उसकी आंखें निकालने वाले होते हैं उसी दिन सुबह वो देखता है, उसके मन में कुछ होता है और उन पर्वतों की ओर वो जाने लगता है, वो चढ़ते जाता है, लहूलुहान होता है, थक जाता है, शाम हो जाती है। उसका आगे क्या हुआ? लेखक ने कहानी अधूरी छोड़ दी है। 1939 में इसका एक संस्करण आया और जिसमें कहा गया कि भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड, भूकंप। उसने चिल्ला चिल्ला के वहां के लोगों को कहा कि चलो यहां से। वो लोग नहीं माने, उन्होंने कहा ये तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारा भ्रम है। और वो उस कन्या को लेकर वहां से चला गया। ये कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिस पर मूवीज भी बनी। इतिहासकारों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, सोशलिस्ट ने इसकी बड़ी गहराई से इसका अध्ययन किया है। एक ऐसा समाज जो अंधा है, एक ऐसा समाज जो सत्य को नहीं देख सकता, एक ऐसा समाज, अगर उस समाज को सत्य की बातें बताओ और उस समाज को यदि दृष्टि की बातें बताओ और प्रकाश की बातें बताओ तो वो ऐसे व्यक्ति को पागल समझता है, वो भ्रम में है ऐसा समझता है। परंतु उस व्यक्ति ने फिर निर्णय लिया कि मुझे अब यहां नहीं रहना, और उसी दिन सुबह वो वहां से चला गया। वो उस दुनिया से बाहर निकल पाया कि नहीं, एच जी वेल्स ने अपनी उस किताब में अधूरा छोड़ दिया है। शायद निकल पाया हो, पर यह कहानी इसी समाज की है जहां एक कलेक्टिव ब्लाइंडनेस समाज में है, जहां हम वो नहीं देख सकते जो हमें देखना है, हम उस सत्य को नहीं देख पाते जो देखना है। शायद कोई बेहोशी है, शायद कोई असत्य का प्रभाव है, शायद कोई कंडीशनिंग, कोई भय। जो व्यक्ति अपने ही उस सत्य को देख ले, उसके लिए जीवन की बहुत सारी चीजें सरल हो जाएगी। तो सभी एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने ही सत्य को देखने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूं? जहां मैं खड़ा हूं, जीवन के इस मंच पर, वो क्या है, वो कहाँ है? अपने आप को अत्यंत और नितांत अकेला देखो। ना कभी कोई था, ना कोई है, ना आगे कोई है रहेगा। इस यात्रा में मैं निरंतर और हमेशा से अकेला ही रहा हूं। सभी भ्रम, सभी मुखौटे, सभी झूठ एक तरफ, मेरे भीतर ही एक न्यायालय है। मेरे जीवन में अब तक जो मैंने निर्णय लिए, साक्षी होकर देखेंगे। एक मौन, एक खामोशी, एक अंतराल, अ पॉज, न पश्चाताप, न भय, केवल देखना। सत्य शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच जो अंतराल है, जो मौन है, वहां है। नियति ने एक अवसर दिया है अपनी भागती जिंदगी में रुकने का, ठहरने का, इस प्रकृति के सानिध्य में आने का। प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति इस प्रकृति से हो सकती है। जैसे ही हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, मन अपने आप प्रेम से भर जाता है, मन अपने आप आनंद से भर जाता है। और जहां आप अभी ठहरे हैं, वह अत्यंत रमणीक स्थान है। इस देश में लोगों ने इस धरती को मां कहा है, इस देश में लोगों ने नदी को भी मां कहा है, क्यों? उस सूर्य को पिता कहा है, क्यों? कैसी उनके भीतर भावना होगी, कैसी मैत्री होगी, कैसा प्रेम होगा, कैसा निर्मल हृदय होगा। तो जब तक आप सब यहां हैं, एकांत में बैठना है कभी, पेड़ों को देखो, सूरज को देखो, यहां श्वेत वस्त्र धारण किए हुए घूम रहे उन लोगों को देखो। ये कौन सी दुनिया है, ये कौन से लोग हैं? आकाश को देखो, चारों तरफ एक ऊर्जा है, एक अद्भुत अज्ञात अननोन ऊर्जा। न मालूम यहां आते ही क्यों ऐसा लगता है सबको, जो भी यहां आते हैं, जो मन पर बोझ था, जो एक तनाव था, वो किसी ने खींच लिया, किसी स्पंज की तरह सोख कर लिया। तो जब तक यहां है, तब तक प्रकृति से जुड़ना है, उस प्रेम से जुड़ना है। जब तक यहां है, तब तक अपने ही जीवन को साक्षी होकर देखना है, हम कहां दौड़ रहे हैं, ये कौन सी दौड़ है, ये कैसी दौड़ है, हम कहां पहुंचे हैं, कहां को जा रहे हैं। क्या हम वही हैं जो दिखाते हैं, या केवल मुखौटे ही मुखौटे हैं? सी योर सेल्फ एज नेकेड एज पॉसिबल। सभी आवरण, सभी वस्त्र, सभी मुखौटे हटाकर स्वयं को देखो। ये एक सुंदर अवसर भाग्य ने दिया है, इस निसर्गरम्य स्थान पर आने का। स्वयं से बातें करनी है, अपने जीवन से बातें करनी है, रुकना है, पॉज, साइलेंस। यहां जब बैठते भी है, अनेक अनेक वक्ता आते हैं, प्रभावशाली वक्तव्य देते हैं अपने अनुभव से, जीवन से, उनको सुनते सुनते भी अपने ही जीवन में डुबकी लगानी है, अपने ही जीवन को आर पार देखना है। क्योंकि जब हम ऊंचाई में होते हैं तो नीचे की सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। आप अभी आबू राज, इस आबू पर्वत पर हो, यहां बैठे सोचो मैं एक पर्वत पर हूं और वहां से सारा कुछ दिख रहा है। अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को, अपने संबंधों को, अपने जीवन के लक्ष्य को, क्या उमंगे थी जब जीवन की यात्रा शुरू की और भागते भागते हम कहां पहुंचे। हम जिसे प्रेम कहते हैं, क्या वो वास्तव में प्रेम है या कोई भय या कोई वासना या और कुछ। उस प्रेम को एक्सपांड करना है इस प्रकृति के सानिध्य में। ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, ऑल एक्सपांशन इज लाइफ। अब्राहम लिंकन के विषय में कहा गया है कि सीनेट की मीटिंग थी, बुझा रहे थे और अचानक उन्होंने देखा एक सुअर किसी गटर में फंस गया है, उसको निकालने में लग गए, कपड़े खराब हो गए, मीटिंग बाद में हुई। ये कैसा प्रेम था वो सर्व के प्रति है। ऐसी उदात्त और ऐसी ऊंची भावनाओं में हृदय जब बहने लगे तो जीवन के सारे सत्य वहां प्रकट होने लगते हैं। तो यहां आए हैं तो अपने आप को किसी अज्ञात उस प्रेम से भर कर जाना है, यहां आए हैं तो कोई मौन से अपने आप को भर कर जाना है, यहां आए हैं तो यहां के प्रकंपनों को अपने भीतर समाना है। क्योंकि शब्द खो जाएंगे यहां से जाने के बाद, इतना रहेगा भर कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सुनाया, और वो भी भूल जाएगा। जो याद रहेगा वो है एहसास, वो है अनुभूति, वो है कंपन, वाइब्रेशंस। तो बैठे बैठे ही उन वाइब्रेशंस को अपने अचेतन मन में समाने देना है। और आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, द पॉज बिफोर द जजमेंट। जजमेंट की परिभाषा आपसे अधिक और कोई नहीं जान सकता। जजमेंट के कई अर्थ है, जज के कई अर्थ है। टू जज इज टू पास जजमेंट, टू जज अर्थात डिसाइड ऑल्सो, निर्णय करना, गेस करना, टू होल्ड एन ओपिनियन, टू पास अ जजमेंट। और हमेशा हमें अपने जीवन में निर्णय लेना पड़ता है, बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं। परंतु जब भी निर्णय लेने की स्थिति होती है, कई लोग निर्णय नहीं ले पाते, दे लीव इन द स्टेज ऑफ इनडिसीजन, करूं कि ना करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। यहां आने से पहले भी शायद मन में दुविधा थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। संसार में ढेर सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, उसमें हम कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। वैसे ये भी एक येट अनादर कॉन्फ्रेंस, परंतु ये केवल कॉन्फ्रेंस नहीं है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, ये विशुद्ध संस्कृति का एक द्वीप है। यहां के प्रकंपन में पवित्रता है, यहां के कण कण में ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इस परस परिसर में न मालूम जब से ये बना तब से कितने लोगों ने तपस्या की, कितनी अनगिनत कॉन्फ्रेंसेस हुई और पता नहीं कितनी आत्माओं का जीवन बदल गया। तो ऐसे हाई वाइब्रेशनल प्लेस में आप सब बैठे हैं, हवाओं में दिव्य तरंगे हैं, मौन है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति का अनुभव। डिसाइडोफोबिया एक शब्द है, निर्णय लेने से डरते हैं लोग और हमेशा अनिर्णय की अवस्था में रहते हैं, टू बी और नॉट टू बी जैसी अवस्था, जैसे शेक्सपियर का हेमलेट था, निरंतर एक दुविधा, निरंतर करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, इस रिलेशनशिप को बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं। एक जज, एक लॉयर, क्या सामान्य मनुष्य, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, कोई भी, सुबह से लेकर रात तक हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और यदि हमारी उस हैमलेट की तरह स्थिति रही, जो आता है, देखता है उसके पिता की मृत्यु हो गई, मृत्यु के तुरंत बाद ही उसकी मां ने पिता के छोटे भाई से विवाह कर लिया, वो राजा रानी है, वो राजा बनने वाला था पर अभी उसके अंकल राजा बन गए हैं, एक भूत का साक्षात्कार होता है उसके पिता का भूत, वो भूत उसके कहता है कि तुम बदला लो, और तब से दुविधा चालू होती है, क्या करूं, कैसे करूं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है जो मनुष्य आत्माओं का ही यह प्रश्न है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। उसे प्रेम है उस मंत्री की पुत्र ओफिलिया से, वो पागलपन का सॉन्ग करता है ताकि लोगों को पता ना चले, ताकि सत्य को पा ले। There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. वो अपने साथी से कहता है कि यह शायद तुम्हारा भ्रम होगा कि तुम्हें एक भूत दिखा, पर वो अंतु भूत, वो कहता है, परंतु वो मेरे पिता थे। वो सत्य जानना चाहता है, एक नाटक रचाता है, वैसा ही अपने नए राजा के सामने जो उसके पिता के साथ हुआ। उसकी मां ने और उसके इस नए पिता ने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी थी, और देखता है रिएक्शन राजा क्लाउडियस का, और पता उसको कंफर्म होता है कि इसी ने मारा। अपनी पिता, अपनी मां गर्ट्रूड से सामना करता है और वहां अपनी तलवार निकालकर देखता है पर्दे के पीछे शायद वही राजा है, मार देता है, वो मंत्री होता है, उसकी मृत्यु होती है, मंत्री की बेटी मर जाती है इस दुख में। राजा उस ओफिलिया के ब्रदर के साथ षड्यंत्र करता है ताकि हेमलेट को मार सके, परंतु विषभूजी तलवार से दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। रानी गलती से वो विष का प्याला पी लेती है और हेमलेट मरते मरते राजा को मार देते, सब मर जाते हैं, ट्रेजिडी, कोई नहीं बचता। यह विश्व की सर्व प्रसिद्ध ट्रेजिडी है, हेमलेट की। और यह ट्रेजिडी केवल हेमलेट की नहीं, शायद हमारी है, हम सब की है, जहां हम निर्णय कर पाते करना क्या है जीवन में, जाए कि ना जाए, जो चल रहा है वही चलने दे कि कहीं रुके, वही रूटीन, वही पैटर्न, वही दिनचर्या, हरेक को अपनी दिनचर्या का ऐसा लगाव है कि उसमें जरा सा भी वो बदल नहीं करना चाहता, अपनी विचारधाराओं का एडिक्शन, वो निर्णय नहीं ले पाता, करूं कि नहीं करूं, इनडिसीजन। तो आज हम ऐसी 8 बातें देखेंगे जो जीवन में कोई भी निर्णय करना हो उसके पहले हम नोट करें कि ये सारी बातें हो गई। अगर ये हो जाए तो फिर निश्चिंत होकर हम निर्णय ले सकते हैं, कोई भी निर्णय, चाहे आध्यात्मिक जीवन, चाहे लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र का, चाहे जॉब का, चाहे एक्सरसाइज का, चाहे रिलेशनशिप का, चाहे दिनचर्या का, एनीथिंग। सबसे पहला अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स। कोई भी जज अगर हो तो केवल पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं दिया जाता है, संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है जिस बीच चीज का हमें निर्णय लेना है। यदि जिम जाने का वो निर्णय है, एनालाइज एवरीथिंग। यदि रनिंग का वो निर्णय है, एवरीथिंग। यदि एक्सरसाइज का वो निर्णय है, सब कुछ। यदि कोई रिलेशनशिप का वो निर्णय है, एनालाइज एवरीथिंग। यदि जीवन में ये विचार आ रहा है कि मुझे थोड़ा सा भीतर जाना है, एक जगत और भी है जो अध्यात्म का जगत है, शायद सब कुछ पाकर भी क्यों खालीपन है, क्यों रिक्तता है, क्यों हॉलोनेस है। एक वैज्ञानिक ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में, आई हैव रिसर्च्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट माय लाइफ एंड टुवर्ड्स द फैक एंड ऑफ लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप थ्रू माय फिंगर्स। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया, इतना पैसा मिल गया, करियर, मेरे पास सब कुछ है, परंतु फिर भी क्यों ऐसा लगता है जीवन उंगलियों से जैसे निकल गए, रेत की तरह। Why I feel that emptiness, that hollowness? और ये फीलिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य कुछ और है। जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने पाया, इससे भी परे, the अज्ञात, the unknown, still waiting, उसको जानना है। आप देखेंगे यहां पर सब यंग लोग दिखते हैं। एक प्रश्न आना चाहिए, ये कौन लोग हैं और क्यों है, यहां क्यों आ गए ये लोग। पूछो कहीं किचन में जाकर, कोई डिपार्टमेंट में जाकर, जो लोग माताएं जो घूम रही है, शायद उन्हें तो पता भी नहीं कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रश्न पूछो कि तुम यहां क्यों आए, शायद उस अनपढ़ व्यक्ति का दिया हुआ उत्तर इस कॉन्फ्रेंस का सर्वोत्तम भाषण होगा, द ग्रेटेस्ट स्पीच, क्योंकि उसमें अनुभव होगा, सत्यता होगी। तो जीवन में अगर कोई निर्णय लेना है, क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है, अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स, पूर्ण जानकारी। हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस, अर्ध ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान अज्ञान से भी बदतर है। कानून के आंखों में पट्टी इसलिए नहीं है कि वो देख नहीं सकता, परंतु इसलिए क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, पक्षपात से मुक्त है, क्योंकि इट एनालाइजेस एवरीथिंग, सारे तथ्य, सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तो जीवन में अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है, क्या करना है, सब कुछ जानकारी हासिल करनी है, रॉ मटेरियल। उसके लिए क्या चाहिए, एक पॉज, एक साइलेंस, एक अंतराल। और यहां अभी आप आए हैं, तो यहां से जाने से पहले अपने उस जीवन के प्रति कोई निर्णय लेकर जाना है। वहां जो दुविधा है, वहां जो कंफ्यूजन है, वहां जो असमंजस है, वहां जो इनडिसीजन चल रहा है या गड़बड़ चल रही है, संबंधों में कड़वाहट, मनमुटाव, एक संघर्ष, अफ्रिक्शन, यहां बैठकर वहां का निर्णय लेना है। दूसरा, बैलेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दो है, सारे ऑप्शंस निकालो, क्या क्या किया जा सकता है। हमें याद है जब हम छोटे थे, MBBS पूरा हुआ था और अचानक बुक्स, किताबें, अध्यात्म का अध्ययन, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी उस समय, सब कुछ ये भी देखूं, वो भी देखूं, ये भी क्या है, इस संसार की सारी संस्थाएं, 50-60 संस्थाएं, इधर इधर इधर, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, योगा द सत्संग सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, एक 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 संस्था, एक 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 धर्म, एक 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 धर्म स्थापक एक निर्णय लेना था क्या किया जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, पेशेंट सर्विस, या संसार को छोड़कर उस सत्य की खोज। और उसी सत्य की खोज हमें यहां ले आई। जैसे आप यहां आए हैं, हम भी आए थे एक बार नीचे, और एक ऐसे सत्य को पाया जो संसार में कहीं नहीं मिला। द लास्ट स्टेशन, जब ये सोच लिया था कि ये सब हो गया, ईस्टर्न वेस्टर्न रिलीजन्स फिलॉसफी, अब क्या करना है, तो कोई एक शक्ति यहां ले आई और उसी शक्ति ने यहीं रोक दिया। पूरे भारत की यात्रा की उस परम सत्ता की प्राप्ति के लिए कि वो सत्य क्या है, वो जिज्ञासा, एक तरफ मेडिकल और एक तरफ अध्यात्म, दो लड़ाइयां, और आखिरकार यहां आए। तुलसीदास ने लिखा है पावा परम विश्रामा, ये रामचरितमानस लिखकर मुझे परम शांति की अनुभूति हुई है। ऐसा ही वो अनुभव था, पावा परम विश्रामा। वो निर्णय की अवस्था थी उस समय। कंटिन्यूअस 7-8 मास हम एक मौन में थे, इधर या इधर, इधर या इधर, इधर या इधर, कहां जाऊं, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, पैसे या सत्य, किधर जाऊं। दूसरा हमने कहा ऑप्शंस लिस्ट करने हैं सारे, ए बी सी डी, और उस ऑप्शंस में हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स, और एक बार ऑप्शन चूज कर लिया तो जंप कर दो फिर। इमैनुअल कैंट करके फिलोसोफर था जर्मन का, बहुत एक्यूरेट, पर उसको एक समस्या थी, उसको एक स्त्री से प्रेम हो गया था और उस स्त्री ने कहा कि हम शादी करते हैं। उसने कहा वेट, लेट मी रिसर्च। लाइब्रेरी में उसने शादी के विषय में करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, इसका रिसर्च चालू किया, सारी किताबें पढ़ी, आखिरकार उसने निर्णय लिया करनी चाहिए। और जब गया तो उस स्त्री ने दरवाजा खोला, उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी थे, इट्स टू लेट, डिलेट डिसीजन हो गया। तो इंस्टेंट डिसीजन तो नहीं लेना है, परंतु कैसे, सोच समझ कर। सारे पॉइंट्स उस डिसीजंस के, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोस कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। सुबह उठना है, ये एक डिसीजन है, क्यों उठे, अच्छा सो जाओ, क्या करना है उठ के। पर आपने यहां अनुभव किया होगा सुबह सुबह सब उठ जाते हैं, कैसी ऊर्जा होती है, कैसी पावर होती है उसमें, द फर्स्ट आवर रूल। उस फर्स्ट आवर में यदि हम जीवन के विषय में सोचे तो उस जीवन के विषय में जो हमें चाहिए वो स्पष्ट थिंकिंग वातावरण बहुत फ्रेश होता है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह सुबह उठे, उठते हुए दिखाया है योगियों को, ऋषियों को, देवताओं को, सुबह सुबह माइंड फ्रेश, प्रातः स्मरामी, सुबह सुबह, गेट डिटैच फ्रॉम द बॉडी, नच भाति भूत संगम, और मैं वो विशुद्ध चेतना हूं, इस शरीर से भी परे कोई सत्य है, ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, इससे परे भी, द साइंस ऑफ फिजिक्स टेक्स मी टूवर्ड्स मेटाफिजिक्स, आइंस्टाइन ने कहा है, ये फिजिक्स की स्टडी करते करते मैं मेटाफिजिक्स तक पहुंच रहा हूं, मेटाफिजिक्स इज समथिंग बियॉन्ड, ये जो दिख रहा है शरीर और इसकी ये दुनिया और उसके ये कंफर्ट्स, उससे परे भी कुछ है, समथिंग। वेस्टर्न फिलॉसफी अभी तक उसे नहीं जान पाई है। ईस्टर्न और वेस्टर्न दो फिलोसॉफी थे जो भारत में पढ़ाई जाती है, वो ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ाई जाती है, और एक ईस्टर्न फिलोसॉफी भी है जो एक परे की सत्ता को भी मानती है, साइकिक साइंसेस, साइंस ऑफ द साइंस, साइंस बियॉन्ड द साइंस, एक ऐसा मार्ग, द पाथलेस पाथ, द रूटलेस रूट, द रोडलेस रोड, द गेटलेस गेट भी है जो अदृश्य है। तो सुबह सुबह उठो, ये एक निर्णय है, उठना है नहीं उठना है खुद का निर्णय है, फायदे लिखो नुकसान लिखो। तो सेकंड है बैलेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, तीसरा रूल, कन्फ्रंट योर फियर्स। हम भय के साथ निर्णय लेते हैं, भय है समाया हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी भय को हम बाजू रखे और फिर जीवन का कोई निर्णय ले। अगर कोई गवाह भयभीत होकर निर्णय दे, गवाह दे, तो वो गलत होगा। इमेजिन द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, ये निर्णय ले लिया, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इट्स ओके, वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी। तो जीवन का कोई भी निर्णय, कोई भी जजमेंट पास करना है, तो तब भी भयभीत होकर नहीं। अन्याय के दर्द को रिश्वत शांत नहीं कर सकती, इंसाफ 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 होगा। एक दिन आकाश बेदाग होगा, चांद का चेहरा साफ होगा, तब इंसाफ होगा। तराजू उठेगा तो इंसाफ होगा। एक न्यायालय बाहर है, एक भीतर, इससे कैसे बचेंगे? यदि हमारे इंसाफ से, यदि हमारे न्याय से, हमारे निर्णय से किसी को दुख हो रहा है, गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा। जब हमारा मन इतना स्वच्छ हो जाए, बेदाग उस चांद का चेहरा जब साफ हो, तो जो हमने किया है, यहां एक न्यायालय है, यहां एक कोर्ट है, उससे नहीं भाग सकते। तो तीसरा, कन्फ्रंट योर फियर्स। एक भय है भीतर, भय, एक डर। आज शाम को हम जब नक्की लेक है इधर घूम रहे थे, तो एक हमारी पुरानी पेशेंट मिल गई अभी एक घंटा पहले। तो हमने कहा बहुत दिनों से दिखे नहीं। उसने कहा मेरे बेटे की डेथ हो गई है। हमने कहा कैसे? उसने कहा सुसाइड कर लिया, उम्र 21। क्या हो गया? उसने कहा उसे गेमिंग का एडिक्शन हो गया था, गेमिंग, यहाँ के लोकल माउंट आबू के, गेम 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 गेम, फिर दुखी रहने लगा, नहीं सुनता था किसी की भी, पता नहीं क्यों उदास रहने लगा। और जाते समय वे अभी मार्च 21 में वीडियो रिकॉर्ड किया कि मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूं, और फांसी लगा दी। और तब से उस माता ने कहा डर सा लग रहा है, नींद नहीं कर सकती, दिमाग सुन हो गया है, समझ ही नहीं आता है क्या है। वो हमारे बीपी की पेशेंट है, सब दवा भी आज छोड़ दी है, कुछ खबर ही नहीं। आत्माएं बड़ी पीड़ा में और दर्द में और दुख में है और भय में है। क्या हमारी उपस्थिति से, हमारे न्याय से, हमारे निर्णय से किसी का भय, किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की पीड़ा कम हो सकती है? The only who live for others, the rest are more dead than alive. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, केवल वही जी रहे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, बाकी तो एक जीवन मरा हुआ जीवन, डेड लाइफ है। मैं, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, बस। सोच ही नहीं पा रहे अपने से ऊपर उठकर। एक ऐसा जीवन भी है जिसमें हम कुछ और देख सकते हैं। वही अंतर्दृष्टि प्राप्त होने के लिए शायद आप सब यहां आए हैं, कि जो सर्कल में हम जी रहे उससे परे भी कुछ है। There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. हैमलेट बार बार अपने साथी होरेशियो से कहता है कि तुम जितना सोचते हो उससे परे भी एक जगत है, उससे परे भी कुछ है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है होरेशियो, उससे परे भी कुछ है जो हमें पता ही नहीं। हम सोचते हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, यही जीवन है, यही जीवन का लक्ष्य है, परंतु कुछ और भी तो है। चौथा, डिस्टिंग्विश इंपल्स एंड विजडम। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले वो क्रोध में, आवेश में नहीं लेना है, थोड़ा समय बीत जाने देना है, और पॉज, अंतराल, और फिर निर्णय लेना। जॉर्ज गुरजीएफ ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मेरे पिता मरते समय मुझे एक पाठ सिखा गए और मैं आज तक नहीं भूला। वो पाठ था, मरता हुआ पिता अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ गया, एक शिक्षा केवल, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, कि जब भी तुम्हें क्रोध आए 24 घंटे तक निर्णय नहीं लेना, 24 घंटे के बाद लेना। कोई आवेश, एजिटेशन की स्टेट में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो गलत ही होगा। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हजार रंग है उन दोनों के बीच। इसलिए पॉज, रुको, टाइम बीत जाने दो। नॉर्मन विंसेंट पील बहुत बड़ा ऑथर है, उसके बाद ये सब सेल्फ हेल्प की किताबें चालू हुई। उन्होंने एक भाषण दिया था रेडियो पर अब्राहम लिंकन के विषय में। एक लेडी ने खत लिख के बताया कि आपने तीन चार चीजें एकदम गलत बताई है अपने भाषण में, आपको सोचना चाहिए था, भाषण देने से पहले स्टडी करनी चाहिए, ऐसे कैसे आपने भाषण दे दिया। उन्होंने जब ये लेटर लिखा, पढ़ा, तो उनको लगा कि ये कौन है जो मुझे चैलेंज कर रही है। मैं 200 लेक्चर दे चुका हूं अब्राहम लिंकन के विषय में, सारी स्टडी है मेरे पास। उन्होंने एक खतरनाक लेटर लिखा उस लेडी को कि अब देखता हूं तुम मुझे चैलेंज करते हो, मेरे ज्ञान को। एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, यह ऐसा है, तर्क वितर्क। पर लेट हो गया, तकिए के नीचे खत रख दिया। दूसरे दिन उठा, उसको लगा थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया, इट शुड बी लिटिल माइल्डर, तो दूसरा खत लिखा। पर उसको लगा एक रात में इतना फर्क पड़ गया तो लेट मी वेट, एक खत लिखता है, फिर उसको तकिया के नीचे रखता है। दूसरे दिन देखता है तो लगता है अरे बाप रे, ये भी थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, वो आखिरकार मुझे फीडबैक ही दे रही थी ना, ठीक है फीडबैक तो लेना चाहिए ना। फिर खत लिखता है, 7 दिन तक खत लिखता है, लास्ट में लिखता है आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आंखें खोल दी, क्या हम मिल सकते हैं, वो दोनों मिलते, एंड देन वी बिकेम एन इटर्नल फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। दोस्त बन गए जीवन भर के लिए, एक अच्छी दोस्त बन गई वो। तो इंपल्स एंड विवेक, विवेक श्वास लेता है, रुकता है, तुरंत नहीं। जेन मास्टर लिंची ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं नौका विहार करने का शौकीन था, रात रात नौका विहार करता था, बोट में ही बैठ के मेडिटेशन करता था। और एक बार मेडिटेशन कर रहा था, किसी दूसरी नाव ने मेरी नाव को टकराया, इतना मुझे क्रोध आया, कौन है जो मेरी नाव को दिखता नहीं, एक ही तो नाव है मेरी पूरे तालाब में। पीछे मुड़कर देखा तो खाली नाव थी। अब किस पे क्रोध करे, क्रोध का करूं क्या, उस नाव में कोई था ही नहीं। तब सोचता है क्या करूं, अब इस क्रोध को जहां से आया था वहीं ले जाता हूं, भीतर से आया था ना, भीतर ही ले जाता हूं। और भीतर ही ले गया और उसने लिखा कि ये नाव अब मेरा गुरु बन गई। इसके बाद जब जब मेरा कोई अपमान किया, मेरे मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे अपोज किया, आई फील इट इज एन एम्प्टी बोट। वो एम्प्टी बोट है, मेरा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंसल्ट हो रही है, अपोजिशन हो रहा है। वो अपोजिशन व्यक्ति जो कर रहा है वो या तो बेहोश है, या ज्ञान में है, या दर्द में है, या कंडीशनिंग है उसकी। बस ही इज बट एन एम्प्टी बोट। मैं क्यों रिएक्ट करूं? वेट, पॉज, साइलेंस। पांचवा, इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस। हर निर्णय एक बीज है और बीज झाड़ बनता है। जैसे ये झाड़ है इधर तुलसी का, इसका एक बीज है, उसी तरह हर निर्णय एक बीज है, उस बीज का एक झाड़ बनेगा, उसमें पत्तियां होगी, डाल डालियां होगी। तो हमारा निर्णय बहुत सोचा समझा हो, जीवन का निर्णय क्या करना है। आपने देखा होगा यहां बहुत सारी बहनें हैं श्वेत वस्त्र धारण करके, बैच लगाकर, ब्रह्मा कुमारी, इन्होंने भी तो कभी निर्णय लिया होगा ना। चाहते तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे, जॉब कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे, क्या कुछ कर सकते थे। कौन सा इनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि ये रुकी और जो जीवन की धारा उधर बह रही थी इधर बहा दी। ये कौन लोग हैं? ऐसा मन में अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आश्चर्य होगा, आश्चर्य होना चाहिए, ये कौन है। क्यूरियोसिटी शुड अराइज, हु आर दीज पीपल। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, उनकी मृत्यु 1902 में हुई, ब्रह्मा कुमारी संस्था 1936 के आसपास चालू हुई। उन्होंने लिखा उनकी 9 वॉल्यूम्स है, खंड उसमें नहीं लिखा है, पर उनके जो एक शिष्य थे उनसे हमारी जब एक बार मुलाकात हुई थी, शिष्य के शिष्य चेन्नई में, उन्होंने कहा था कि स्वामी जी ने ऐसा लिखा है, अ डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन इंडियन लेडी, जब भारतीय नारी, क्लैड इन व्हाइट, श्वेत वस्त्र धारण करेगी, शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। शायद वो भविष्यवाणी इन्हीं ब्रह्मा कुमारियों के लिए थी। और कौन है, और कौन हो सकता है, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया परमात्मा यज्ञ की इस वेदी पर, स्वाहा कर दिया अपने यौवन को, अपनी इच्छाओं को। आप यहां जो आए हैं उन्हीं की वजह से आए हैं। इवैल्यूएट कॉन्सिक्वेंसेस। इस निर्णय का परिणाम मेरे जीवन में क्या होगा, ये जो दूसरे हैं मेरे इर्द गिर्द उन पर क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये सब देख लेना है निर्णय लेने से पहले। क्योंकि मेरा निर्णय सबको प्रभावित करेगा, इवन समाज को प्रभावित करेगा, विश्व को प्रभावित करेगा, इट विल इन्फ्लुएंस एवरीवन। सो इफ आई टेक सम डिसीजन, लेट मी डू इट मेटिकुलसली, लेट मी बी एब्सोल्युटली केयरफुल इन माय डिसीजन, लेट मी नॉट हरी, लेट मी पॉज, थिंक, मेडिटेट, कॉन्टेम्पलेट एंड देन टेक अ डिसीजन, सो दैट आई डोंट हैव टू रिपेंट। तीन कछुओं की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। दो कछुए पिकनिक पर जाने की सोचते हैं, सैंडविच बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। तीसरा कछुआ उनको ज्वाइन करता है, वो तीनों जाने लगते हैं और बीच में फिर बारिश होने लगती है। चट्टान के नीचे वो कछुए तीनों रुकते हैं। पहले दो कहते हैं कि हमने सैंडविच बनाया, शरबत बनाया, तुमने कुछ नहीं किया, जाओ जाकर छाता ले आओ। वो कहता है ना ना, मैं इतना भोला नहीं हूं, मैं जाऊंगा और मुझे पता है तुम लोग सैंडविच खा लोगे, शरबत पी लोगे। उसे बहुत समझाते हम नहीं करेंगे, वो नहीं मानता है। वो कहते हैं फिर हमारी खोल जो है ना, शेल, उसकी कसम कि हम नहीं खाएंगे जब तक तुम नहीं आओगे। तब कहीं जाके वो तीसरा कछुआ मानता है, निकल पड़ता है। 10 मिनट, 4 घंटा, 24 घंटा, अब तक नहीं लौटा। 1 दिन नहीं लौटा, 2 दिन नहीं लौटा, 10 दिन हो गए, अब तक नहीं लौटा। वो दो कछुए कहते हैं मुझे लगता है अब हमें सैंडविच और ये शरबत, सैंडविच खा लेना चाहिए, शरबत पी लेना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है चट्टान के वहां से, मुझे पता था। मुझे पता था मेरे जाते ही तुम सैंडविच खाओगे, इसलिए मैं नहीं गया। इनडिसिजन भी और लैक ऑफ फेथ भी, दोनों चीजें हैं। अगला, फाइंड द रूट्स, अर्थात उसकी तह तक जाना है। निर्णय जो ले रहे हैं, 5 वाई का नियम है, क्यू 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 क्यू। पहला क्यू क्यों लिया जा रहा है, एक उत्तर आएगा, उस उत्तर का फिर से एक क्यू, इसको कहते हैं 5 वाई रूल्स। अगला क्यू 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 एंड देन टेक अ डिसीजन। उसकी जड़ों तक जाकर अगला, गेट द हायर पर्सपेक्टिव। इसमें बहुत अच्छे दो बातें हैं। जैसे कोई फ्रेंड मुझे एडवाइस कर रहा है, अपने आप को सोचो कि एक दूसरा व्यक्ति है, उसके जीवन में ये है और मैं फ्रेंड हूं और खुद ही को एडवाइस करो, एक तो ये, और दूसरा डेविल्स एडवोकेट। सोचो मैं विरोधी पक्ष का हूं और इस निर्णय का विरोध कर रहा हूं। ये दो दृष्टिकोण अपनाने, एक फ्रेंड वाला, एक एडवोकेट अगेंस्ट, डेविल्स एडवोकेट का, और अपने उस निर्णय को देखो कि ये निर्णय कैसा है, कितना खरा उतरता है उस पर। ये उसका विरोध करेगा, तर्क देगा, ये फ्रेंड की तरह देखेगा, हायर पर्सपेक्टिव है। लास्ट, हियर द इनर वॉइस। हम सबके भीतर एक सूक्ष्म आवाज है, एक आवाज जो हमें बताती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वहां कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है, एक सूक्ष्म आवाज है, एकांत में बैठना है बड़े निर्णय से पहले, इंसाफ से पहले, इंसाफ देने से पहले, उस आवाज को सुनना जो गिल्ट से परे हो, कि ऐसा हम कुछ ना करें कि जिससे गिल्ट उत्पन्न हो भीतर, जीवन में पश्चाताप करने पड़े। हमने लगा था, हमने भी जो बात सुनाई अपने जीवन की 2003 में, जो निर्णय लिया था, आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमको लगता है कि वो निर्णय लिया इसलिए जीवन आनंद और खुशियों से भर गया। इस संसार में यदि सभी भाग्यशाली आत्माओं, व्यक्तियों के नाम गिने जाए तो उसमें हमारा नाम सबसे ऊंचा रहे, ऐसा भाग्य है। ये ईश्वरीय परिवार, यहाँ के लोग, यहाँ एक अलग सा प्रकंपन। सोचते हम कहाँ थे उधर और कब आ गए इधर और कैसे आए और क्यों आए, कुछ पता नहीं। ये कैसी मशीनरी थी, कहीं और जाने वाले थे, यहाँ आए थे बस 3 दिन के लिए, आकर सोच कर आए थे और ये भी सोच कर आए थे कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले हिप्नोटाइज करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी हिप्नोटाइज नहीं होना है। सारी स्टडी करके आए थे, परंतु काहे की स्टडी और कैसी स्टडी, ऐसी हवा बही, ऐसा प्रेम, यहां की दादियां थी सारी, वो तर्क सब चूर चूर हो गया, वो सारी किताबें, वो सारे शास्त्र सब एक तरफ रह गए, और ये लगा कि यही वो स्थान है जिसकी मुझे बचपन से तलाश थी, जिसको मैं बचपन से देख रहा था। एक डेजावू सा फिनोमिना हुआ, शायद आप में से भी कईयों को हो रहा होगा। जब हम पहली बार नीचे आए थे ऐसा लगा था मैं यहां पहले भी आया हूं, जैसे मुझे यहां के रास्ते भी पता है, यहां ये रास्ता इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा नीचे, फिर वहां एक शायद ऐसा गोल गोल कुछ है, वो पहले ही पहले दिखने लगा। और जब ऊपर चढ़ रहे थे माउंट पहली बार, ये पहाड़ियों को देखकर लगा कि बचपन से इन पहाड़ियों को मैं देख रहा हूं, ये कोई नया नहीं है, एन एब्सोल्यूट न्यू एंड येट ओल्ड एक्सपीरियंस। तो आपको वो पर्ची दी गई है, पाम्पलेट, उसमें जो बातें हमने कही वो सारांश रूप में दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब जीवन में बड़ा निर्णय हो, एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास पेपर है, उसमें से आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्या बताया, अवेयरनेस ऑफ फैक्ट, सारी जानकारी हासिल करनी है निर्णय लेने से पहले। दूसरा बताया बैलेंस करना है, ऑप्शंस लिखने हैं सारे विकल्प, और फिर उसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स। तीसरा बताया अपने भय, स्वयं के भय का सामना करना है, हमारे अंदर छिपे हुए भय है, किसी को किसका भय लगता है, किसी को किसका भय लगता है, अज्ञात से भय है, ऐसे भय कि जो दूसरों के लिए दूसरों को सुनाए तो उनको मजाक लगे, डर लगता है। नेपोलियन था, उसकी हार कैसी हुई, बिल्लियों की वजह से, बैटल ऑफ वाटरलू में वो जब 6 मास का था और पालने में था, वो दाई कहीं चली गई, एक बिल्ली ने आक्रमण कर दिया, दाई समय पर आ गई, बच्चा बच गया, पर 6 मास का वो बच्चा, उसके मन में एक सबकॉन्शियस में फियर चला गया बिल्लियों का, और लास्ट में सारी सबको जीता, अनडिफिटेबल नेपोलियन। उसके दुश्मन को पता चल गया कि इसको बिल्लियों से डर लगता है, 20 बिल्लियां छोड़ी उसको उस युद्ध में, और नेपोलियन निहत्ता हो गया, हार हो गई। नेपोलियन ने एक नक्शा बनाया था बचपन में कि ये पूरे विश्व को जीतता है, एक छोटी सी एक जगह थी उसको उसने छोड़ दिया, इसमें क्या करना है, बहुत ही छोटी जगह है। लास्ट में जब उसे बंदी बनाकर रखा, उसी स्थान पर रखा गया था उसको जो उसने छोड़ दी थी, वहां पर ही वो कैद था अंत तक। तो एक भय, उस भय का विश्लेषण करना है, वो भय क्यों है, कहां से उत्पन्न हुआ, वो काल्पनिक हो सकता है, काल्पनिक भय को, काल्पनिक शत्रु को कल्पना से ही पराजित किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट डिस्टिंक्शन, क्या डिस्टिंग्विश करना है दोनों को, क्रोध का है ये या फिर विवेक का है। अगला कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या हो गए। अगला रूट्स, उसकी जड़ों तक जाना है, और डीप और डीप, क्यों मैं ये लेना चाहता हूं। अगला हायर पर्सपेक्टिव, दूसरों के नजरिए से वो कैसा डिसीजन, एक फ्रेंड और एक अपोजिंग पार्टी कैसे देखेंगे मुझे उस डिसीजन को, और अंदर की आवाज, और एक बैकअप प्लान भी रखना है। ये मार्ग कठिन है जो भी निर्णय हम ले, पर एक बार ए ऑप्शन चुन लिया फिर बी को भूल जाओ और कूद जाओ उसमें, जो होगा वो देखेंगे। इमिली ब्रॉन्टे ने अपनी कविता में लिखा है कि मैं अकेली जा रही थी, मुझे लोगों ने डराया, यहां से मत जाना, वहां पर घोस्ट है, गॉब्लिंस दैट विल, मशरूम्स दैट विल किल यू, आई वेंट अलोंग द पाथ एंड मेट नन बट एंजल्स। मैं जाती गई और मुझे तो फरिश्तों के अतिरिक्त तो कोई मिले ही नहीं, लोगों ने ऐसे ही डरा के रखा था, मुझे तो फरिश्ते ही फरिश्ते मिले। तो ऐसी ये 8 बातें हैं, और जब भी निर्णय लेना हो तो वह निर्णय उस मौन की अवस्था में, उस पॉज को लाना है जीवन में, और ये एक पॉज है यहां आना, जब मन आकाश की तरह साफ हो, चेहरा चांद सा, तब इंसाफ होगा, तब निर्णय लिया जाए। तो सभी स्थिर बैठेंगे, गीत बजेगा, आंखें बंद और अपने ही जीवन को, शुरुआत से अब तक के जीवन को, बचपन से जहां जन्म लिया, जिस गांव में, जिस घर में, वहां से अब तक के सारे जीवन को एक सरसरी नजर, एक विहंगम दृष्टि, बर्ड आई व्यू से आंखों के सामने देखना है। ओम शांति।
हर शब्द से पहले सोचे हम, हर निर्णय से पहले ठहरे, मन की लहरों को शांत करें, फिर सत्य की राह पर चलें। भावनाओं के शोर से ऊपर मौन का संदेश सुने, अंतरात्मा की कोमल वाणी अपने जीवन में गुने। जल्दी में जो निर्णय होते अक्सर भ्रम में ले जाते, धैर्य और विवेक के दीपक सही मार्ग दिखलाते। क्रोध नहीं करुणा से देखे, दोष नहीं गुण पहचाने, हर आत्मा की गरिमा समझे, मानवता का मान बढ़ाए। रुकना हार नहीं होता, रुकना शक्ति का नाम है, जो स्वयं को सुन ले पहले के फूल खिलते हैं जहां तू।